Om Shanti. Namaste. Good morning. कैसे हैं सभी? पिछले दो दिन से यहाँ पर एक आध्यात्मिक वातावरण में आत्मा चार्ज हो रही है ना? अनुभव हो रहा है ऐसा? किस किस को लग रहा है ऐसा? मतलब बाहर की प्राकृतिक सुंदरता और बॉडी की जो रिलैक्सेशन हो रही है उसके साथ सचमुच मन को, आत्मा को भी कुछ प्राप्ति हो रही है और इसी प्राप्ति को आगे हमें कंटिन्यू भी रखना है। बहुत सुंदर कल सेशंस हुए हैं। आप सभी के ध्यान पे आया है कि आत्मा को अगर चार्ज करना है, सशक्त बनाना है, तो उसका एक बहुत सुंदर विधि या एक इफेक्टिव तरीका जो है वो है मेडिटेशन। और इसीलिए दिन भर जब हम आपके फील्ड से रिलेटेड कुछ बातों को डिस्कस करते हैं तो सुबह के सेशंस स्पेशली राजयोग मेडिटेशन के लिए रखे गए हैं। आज अमृत वेला योग में कौन कौन थे? बहुत अच्छा। कल राजयोग शिविर सत्र में हमने अपने बारे में जाना। अभी तक जो नाम, पद, पोजीशन, हमारा रिलीजन, कास्ट, नेशनलिटी, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी पहचान थी, अब हमें अपनी रियल आइडेंटिटी पता चली। हम सभी कौन हैं? यस, जवाब दे, हम सभी कौन हैं? रियल फॉर्म, रियल आइडेंटिटी हमारी है, वी आर सोल। शरीर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है जिसका आधार लेकर आत्मा अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, उसके द्वारा कर्म करती है, अपनी आइडियाज, अपने थॉट्स उसको वो व्यक्त करती है। तो मैं आत्मा और फिर आत्मा के रिलेटेड सारे डिटेल्स हमें बताए गए, दिन भर रिवाइज किया सभी ने। वैसे तो सेशंस में ही कई बार ये बातें रिवाइज हुई है, लेकिन अपने आप से भी जब कहीं बगीचे में बैठो, एकांत में बैठो, जो बातें सुनी है उसको रिवाइज करें और उसकी गहराई में जाकर उसको महसूस करने की कोशिश हम जरूर करें। आत्मा की जब पहचान हमें मिली तो एक और बहुत सुंदर बात हमें पता चली कि जिस प्यार, शांति, खुशी, शक्ति, इन सब चीजों को हम बाहर की दुनिया में आज तक ढूंढते आए, वो वास्तव में कहाँ है? वो आत्मा की कोर क्वालिटीज है, हमारी इननेट नेचर है, वो ओरिजिनल स्वभाव है हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं स्वयं को भूलने के कारण हम उन क्वालिटीज को भी गवाते गए और उसे बाहरी दुनिया में, दूसरी चीजों में ढूंढते रहे। अब सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ वो क्वालिटीज हमारे जीवन में इमर्ज होने लगती है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा, इस रियलाइजेशन के साथ हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी पता चलता है कि वो क्वालिटीज अभी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ठीक है, हम प्रेम करते हैं बट अनकंडीशनल नहीं कर पाते हैं, कहीं कहीं किसी किसी से हम नफरत भी करते हैं। शांति हमें अच्छी लगती है बट कभी कभी कोई कोई सिचुएशन या पर्सन का बिहेवियर हमें अशांत भी कर जाता है ना? ऐसा है। दैट मीन्स कि वो क्वालिटीज जितनी होनी चाहिए वो स्टॉक अभी कम है। जस्ट लाइक कि हमें बॉडी के बारे में पता है कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पांचों तत्वों से हमारा यह शरीर बना है, लेकिन थोड़ा भी इसमें से किसी एक तत्व का लेवल कम हो जाए हमें उसकी जरूरत पड़ती है बाहर से लेने की। वाटर कंटेंट बॉडी में लगभग 70% होता है, लेकिन थोड़ा सा 2% भी कम हो जाए हमें प्यास की फीलिंग आती है, वी फील थर्स्टी। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है पानी का सोर्स कहाँ है, हम वहां जाते हैं, पानी पीते हैं, जैसे वो लेवल जितना एप्रोप्रिएट होना चाहिए वो हुआ, प्यास बुझ जाती है। सिमिलरली आत्मा में ये जो प्यार, शांति, खुशी, शक्ति, पवित्रता, ये सारी चीजें हैं, ये भी कहीं ना कहीं उसका लेवल डाउन जा रहा है। अब ये हमें कहां से मिलेगी? पानी का तो मुझे पता था, भूख लगी थी तो भोजन का पता था, और उस सोर्स, उस स्थान पर जाकर हमने वो गेन किया। लेकिन अब आत्मा की प्योरिटी कम हो रही है, खुशी कम हो रही है, तो क्या किसी फैक्ट्री में इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है? क्या किसी खेती में उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है? नहीं। किसी मार्केट में कोई है बेचने वाला? नहीं। एक तो है सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू जितना है उसको एक्सप्लोर करना, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको एक्सपेरिमेंट्स करना, और दूसरा है अब जितना कम है उसको लेने के लिए उस सुप्रीम सोर्स के साथ जुड़ना। हम सभी ये मानते हैं ना कि खुशी देने वाला, शक्ति देने वाला वो सुप्रीम सोर्स एक परमात्मा है, और उस परमात्मा से अगर हमें जितना जो क्वालिटीज कम है उसे लेना है तो उसकी पहचान बहुत जरूरी है। आप में से कौन कौन है जो परमात्मा को मानते हैं? एज एक्सपेक्टेड सभी हाथ उठा रहे हैं। सभी हम भगवान से प्रेम करने वाले, उनको मानने वाले यहां बैठे हैं, लेकिन हम उनको जानते कितना है? एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर गॉड्स? कितने हैं भगवान? यस, गॉड इज वन, भगवान एक है, सबका मालिक एक है। बट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पुट किया जाए कि हु इज गॉड, ओके एक्सेप्टेड गॉड इज वन बट हु इज गॉड, देन व्हाट हैपेंस? जितने मुख उतनी बातें। हम देखेंगे कैसे परमात्मा के बारे में बहुत तरह की अलग अलग मत, अलग अलग ओपिनियंस हैं। कोई भगवान मानता है साकारी देहधारी देवताओं को, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, माँ दुर्गा, गणेश जी, हनुमान जी, ऐसे हमारी तरह जिनका साकार शरीर है, कईयों ने उनको भगवान माना। किसी ने जो धर्म स्थापक, जो प्रिसेप्टर्स होकर गए, उन्हें अपना इष्ट, अपना भगवान, अपना आराध्य माना। इब्राहिम, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, गुरु नानक देव, इनको हम भगवान का दर्जा देकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते आए, उनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखते आए, उनसे सॉल्यूशंस एक्सपेक्ट करते आए। हमने चाहा कि वो कहीं ना कहीं आकर हमारी हेल्प करेंगे, हमें शक्ति देंगे, और उनको भी हम भगवान मानते आए। सिमिलरली जो बहुत बड़े बड़े संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य आदि हुए, उनकी प्योरिटी को, उनकी आध्यात्मिक शक्ति को देखते हुए उनके जो भी शिष्य आगे रहे, उन्होंने उन्हें भी भगवान कहा, उन्हें भी परमेश्वर का, परमात्मा का रूप कहा, भगवान का अवतार कहा। आप सोचते जाइए कितने सारे अलग अलग मतमतांतर। जैसे कि शुरू में ही कहा कि जितने मुख उतनी बातें। अच्छा, यहां तक भी बातें नहीं रुकी। ये जो पांचों तत्व है प्रकृति, इसे भी हमने भगवान माना, इसको भी हमने पूजन किया। कभी हम बड़ के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, कभी हम नदी की पूजा कर रहे हैं, कभी हम सूरज को जल चढ़ा रहे हैं, तो हमने इनको भी भगवान का रूप मानकर अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी समझ के आधार पर उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा अर्पित की, उन्हें भी रिस्पेक्ट दिया। तो ये जो सारे रूप भगवान के सामने आ रहे हैं, किसी ने शास्त्र को भगवान माना, जितने भी ग्रंथ है, आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, उसको भगवान का दर्जा दिया। किसी ने कहा कि भगवान तो कण कण में व्यापक है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी कह दिया भगवान को। तू भी भगवान, मैं भी भगवान, हर सजीव, हर निर्जीव व्यक्ति, हर जो प्राणी मात्र है, जीव जंतु है, उन सब में भगवान व्यापक है। किसी ने जो भटकती आत्माएं भूत प्रेत है उनमें भी भगवान को ढूंढने की कोशिश की, उसमें भी अपनी समस्याओं का हल खोजना चाहा, और किसी ने कहा कि ये सारी बातों से हमें क्या लेना देना, हमारे लिए तो हमारा कर्म ही पूजा है, इतने सारी मतभेदों में हम क्यों फंसे, हमें क्या लेना देना भगवान कौन है, हम तो अपना काम बस निष्ठापूर्वक करें, अपना काम हम सिंसियरली करें बस ठीक है, हमारे लिए यही भगवान है। अब आप सोचिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, कितने हैं भगवान, कितने हैं भगवान, सभी ने क्या जवाब दिया था, गॉड इज वन। अभी कितने सारे दिख गए, तो फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, सच में इतने सारे भगवान हैं या हमें कुछ समझने में गलती हो रही है। अगर भगवान एक है तो उसके फीचर्स, उसके क्वालिटीज, उसके कर्तव्य वो तो सेम होना चाहिए ना, इतने अलग अलग क्यों, और अलग भी इतना जैसे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते जा रहे हैं, अलग अलग दिख रहा है भगवान, कोई कहता है नाम रूप से न्यारा, कोई कहता है सर्वव्यापी, अलग अलग इतना कुछ होए जा रहा है। तो क्या कभी आपके मन में प्रश्न नहीं आया कि आखिर भगवान है कौन, क्या ये सभी के सभी भगवान हैं? फिर तो ये कहना गलत होगा कि गॉड इज वन, या तो हम उस बात को बदल दें, और अगर हम गॉड इज वन कह रहे हैं तो फिर इतने सारे भगवान क्यों बनाए। तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी हम शेयर करते हैं आपके साथ। कहते हैं एक बार पांच अंधे व्यक्ति थे, उन्हें हाथी देखने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी। ब्लाइंड पर्संस है, दे कैन नॉट सी, बट क्यूरियोसिटी थी कि हमें हाथी को देखना है। तो उनका एक दोस्त, बहुत समय से वो पीछे लगे थे, तो वो एक हाथी के पास उनको ले गया। अब ब्लाइंड है कैसे देखेंगे, तो आप सभी को पता होगा, कल हमारे संतोष भाई भी बता रहे थे, इनके पास टच सेंसेशन बहुत पावरफुल होती है, हाथों से छूकर इनको पता चलता है कि कौन सी चीज कैसी है। तो लगे ये हाथी को देखने, और बहुत दिन की क्यूरियोसिटी थी ना, तो बहुत खुश भी हो रहे थे, यार देखो आज हम हाथी को देख रहे हैं, बहुत टाइम की इच्छा हमारी पूरी हो रही है। तो छूकर जब वो देख रहे थे तो कैसा देखा उन्होंने हाथी को, फर्स्ट पर्सन जो था वो हाथी को छूते हुए कहता है हाथी कोई अलग चीज नहीं है, वो तो सिर्फ सांप की तरह है। दूसरा कहता है नहीं, वो तो हवा लेने वाले पंखे की तरह है। तीसरा व्यक्ति कहता है नहीं, वो तो सिर्फ एक नरम दीवार की तरह है, जस्ट लाइक अ ह्यूज वॉल। चौथा कहता है नहीं, वो तो सिर्फ एक मजबूत पतली रस्सी की तरह है। और पांचवा व्यक्ति कहता है अरे नहीं, वो तो सिर्फ एक खंबे की तरह है। पांचों अलग अलग देख रहे थे ना वस्तु को, हाथी को देख रहे थे सभी, एक ही हाथी को देख रहे थे सभी, फिर ये अलग अलग क्यों बोल रहे थे, इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। सारे सच बोल रहे हैं, हाथी खंबे की तरह होता है क्या, यस वो सच बोल रहे हैं, बट अधूरा सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहा है कोई, गलत नहीं कह रहा है कोई, लेकिन वो कंप्लीट सच्चाई भी तो नहीं है ना हाथी के बारे में। तो इसी तरह से आत्मा का तीसरा नेत्र ज्ञान, वो ज्ञान नेत्र जब बंद हो जाता है, मींस व्हेन वी आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड नॉट फिजिकली, ये लोग तो फिजिकली ब्लाइंड थे ना, हम लोग जब स्पिरिचुअली ब्लाइंड थे, जब हमारे पास स्पिरिचुअल ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था, लेकिन जीवन में दुख था, प्रॉब्लम्स थी, तो हम सहारा किसको मानेंगे, किसकी खोज करेंगे, नेचुरली भगवान की। और उस स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में जब हमने भगवान को ढूंढना चाहा, उसको पाना चाहा, आप सोचिए सिंसियर एफर्ट्स होंगे ना, सच में चाहिए था भगवान से कुछ लेना था, तो जरूर सिंसियरली ढूंढा होगा, और सिंसियरली कोई भी कोशिश की जाती है तो फल तो जरूर मिलता है। तो हमें भी मिला। जो भी हम या हमारे पूर्वज जिन्होंने भी भगवान को खोजने की कोशिश की, उनको जरूर भगवान से कुछ न कुछ मिला। अब मान लीजिए किसी को खोज करते करते भगवान से शांति की अनुभूति हुई, लाइफ की सारी डिस्टर्बेंस, सारा शोरगुल सब एक तरफ और भगवान की शरण में एकदम मन का सुकून, शांति का अनुभव हुआ, वो व्यक्ति वही रुक गया कि भगवान माना शांति। किसी को भगवान के प्यार का अनुभव हुआ, कितना निश्चल, कितना निस्वार्थ, अनकंडीशनल प्यार होता है भगवान का। उसने भगवान के उसी स्वरूप को एक्सेप्ट किया, उसी रूप में उसको मानना शुरू किया। गॉड इज लव, लव इज गॉड, और भगवान के उसी स्वरूप, उसी क्वालिटी को मैनिफेस्ट करने वाले भगवान का स्वरूप बना दिया। ऐसे किसी ने भगवान की पावर का अनुभव किया, किसी ने उसकी काइंडनेस एंड कंपैशन को फील किया, किसी ने उसके जस्टिस को एक्सपीरियंस किया कि भगवान कभी अन्याय नहीं होने देता, वो जरूर न्याय करता है। तो डिफरेंट क्वालिटीज जो भगवान की है उसको हरेक ने महसूस किया और अकॉर्डिंगली भगवान के बारे में अपने अनुभव, अपनी समझ के आधार पर वैसा उसके लिए मान्यता बना ली। इसलिए एक कहावत बनी हुई है, जाकी रही भावना जैसी, पूरा कीजिए, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये स्टोरी जो आपके सामने रखी, इसमें भी मतभेद हुए थे और भगवान के बारे में भी मतभेद है। दोनों में तीन कॉमन फैक्टर्स हैं। कैन यू फाइंड आउट? यस, तीन कॉमन फैक्टर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लाइंडनेस, वहां फिजिकल था, यहां स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है। सेकंड, लिमिटेड एफर्ट, जहां उसके लेग्स को हाथ लगा उसी को खंबा माना, हाथी समझ लिया। यहां पर भी शांति का अनुभव किया उसी को भगवान मान लिया, प्रेम का अनुभव किया उसी को भगवान मान लिया। ठीक है, झूठ कोई नहीं है, मैं बार बार ये पक्का करा रही हूं, झूठ किसी ने नहीं बोला, जानबूझकर गुमराह किसी ने नहीं किया, बट एफर्ट्स वेयर लिमिटेड एंड दैट्स व्हाई दैट वाज नॉट कंप्लीट ट्रूथ, इट वाज पार्शियल ट्रूथ। ओके, एंड थर्ड वन, जब शेयरिंग शुरू हुआ, मैं जब तक जिस रूप में भगवान को मान रही थी, ओके, मैं खुश थी, ये लोग भी तो खुश थे ना, जो जो कह रहे थे मैं खंबे की तरह हाथी है, पंखे की तरह है। बट जब शेयरिंग शुरू हुआ, वहां आई ईगो प्रॉब्लम, ओनली आई एम राइट, मैं जो बोल रही हूं, मैं जो कह रहा हूं, मैंने जो अनुभव किया है बस वही सच है, और दूसरा जो कह रहा है, दूसरा हमेशा कलयुगी लोगों की मानसिकता क्या होती है, मैं सही हूं और दूसरा हमेशा गलत है। तो दूसरे की बात को स्वीकार करे, उसको भी कंसिडर करे, ये हमने नहीं किया। इसलिए आज सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि भगवान एक है, और उतनी ही बड़ी सच्चाई ये है कि अगर हम संसार का इतिहास उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा लड़ाइयां, सबसे ज्यादा युद्ध अगर हुए हैं तो धर्म और भगवान के नाम पर हुए हैं। सोचिए, तो इसलिए जरूरत है हमें कि वो भगवान सच में कौन है ये जानने की। अगर उस सोर्स से हमें कुछ पाना है, उस पिता के साथ संबंध जोड़ना है, अपने आप को भरपूर करना है, सशक्त करना है, तो सबसे पहले उसका परिचय तो हो हमारे पास। लेकिन कैसे मिलेगा? उसके लिए बहुत सर्वे किया गया। दुनिया भर में जितनी सारी मान्यताएं हैं परमात्मा के प्रति, कि परमात्मा, भगवान, ईश्वर, प्रभु, गॉड, अल्लाह, जिसको भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा गया, एक्चुअली उसकी कौन सी ऐसी कॉमन क्वालिटीज हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उन क्वालिटीज की रिसर्च की गई, और उन क्वालिटीज को फिर जो पास करेगा, हम कह सकते हैं कि वो फिर भगवान है ना। किसी भी अननोन फैक्टर को ढूंढने का फॉर्मूला यही होता है ना, कि हम नोन फैक्टर्स का सहारा लेते हैं। किसी एक्स फैक्टर को हमें ढूंढना है, जस्ट लाइक इन मैथमेटिक्स, हम x को एज्यूम कर लेते हैं और बाकी जो नॉन फैक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे लिए यहाँ अननोन है, इतनी मते होने के बाद भी अननोन है हमारे लिए भगवान, है ना। अब उस भगवान को, उस परमेश्वर को हमें ढूंढना है, उसका परिचय पाना है, तो कैसे पाएंगे? तो भगवान के लिए कुछ ऐसे कॉमन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मान्यताएं हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी डायरी में। फर्स्ट, परमात्मा को ओमनीसाइंट कहा गया है, वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मीन्स वो सब कुछ जानता है, कुछ भी, तीनों कालों में, तीनों लोकों में, जहां भी कुछ भी हो रहा है उसको पता है। कहते ना, ऊपर वाले से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है। सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है। आप सभी ना खुद को ये चेक करते जाओ, आपके मन में जो भी भगवान के लिए मान्यता है उसमें ये वाली बात आती है? आप मानते हैं कि भगवान जानता है सब कुछ? यस, यू मे रेज योर हैंड। ओके, देन नेक्स्ट वन, भगवान को कहा गया है सर्वशक्तिमान। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, हिज ऑल माइटी अथॉरिटी। मानते हैं? मानते हैं? वो सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान है वो। सर्वशक्तियां उसके पास है, पूरे यूनिवर्स को चलाने वाला, जगत नियंता उसको कहा गया है। सो इज ओमनीसाइंट, सर्वज्ञ है, ऑलमाइटी है, जिसको हम ओमनीपोटेंट भी कह सकते हैं। थर्ड वन, परमात्मा को सर्वोच्च कहा गया है, उनसे ऊंचा और कोई नहीं। भगवान, भगवान इस संसार की सबसे सुप्रीम पावर। अगर उनसे ऊपर कोई होता तो हम उनको भगवान कहते, सिंपल सी बात। तो भगवान माना जो सबसे ऊपर है। फोर्थ वन, सर्वोपरि, बियॉन्ड ऑल। देर आर सो मेनी ड्यूअलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन, मृत्यु, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, कई तरह की ऐसी सापेक्ष बातें हमारे जीवन में आती है, और परमात्मा को कहा गया कि वो इन सब से परे है, बियॉन्ड ऑल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज ट्रूथ। भगवान को सत्य कहा गया है, क्योंकि सत्य का मतलब ही यही होता है कि उसमें ना तो किसी तरह का कोई चेंज आता है और ना ही वो कभी विनाश को पाता है। अनचेंजेबल एंड इम्पेरिशेबल, इसलिए वो सत्य है, और सत्य है इसलिए सर्वोपरि है। हमारे ऊपर असर आता है ना, किसी ने बहुत अच्छी तारीफ कर दी हमारी, हम कितने खुश हो जाते हैं, और वही अगर इंसल्ट कर दिया तो फर्क पड़ता है ना हमें तो, बट भगवान को नहीं पड़ता। सर्दी गर्मी, जो भी लाइफ की ड्यूअलिटीज हैं, उन सब से परे है वो। फर्स्ट क्या था? सर्वज्ञ, सेकंड सर्वशक्तिमान, थर्ड वन सर्वोच्च, फोर्थ सर्वोपरि, एंड फिफ्थ वन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सर्वधर्म मान्य, क्योंकि वो एक है। तेरा भगवान, मेरा भगवान, इसका उसका भगवान अलग नहीं है, भगवान एक है, ये भी सभी मानते हैं, है ना। तो ये पांचों बातें अपने फिर से मान्यताओं के साथ चेक करो, पांचों स्वीकार हो रही है मन में? भगवान वही कहला सकता है जो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वोच्च, सर्वोपरि और सर्वधर्म मान्य हो। और ऐसा भगवान कौन हो सकता है? साकार देहधारी, जिन्होंने देहधारी के माता पिता के द्वारा जन्म लिया, प्रकृति के पांचों तत्व, गुरु, महात्मा, प्रिसेप्टर्स, कौन हो सकता है भगवान, जिनको ये सभी पांचों कंडीशंस को जो पूरा कर सके। जैसे सिर्फ चमकता है इसलिए तो हम किसी चीज को सोना नहीं कह सकते ना, उसमें सोने की बाकी क्वालिटीज भी होनी चाहिए, तब हम उसको सोना कहेंगे। सिमिलरली ठीक है, हमारे देवी देवता जो होकर गए हैं, हमारे धर्म स्थापक जो होकर गए, समाज के प्रति उन्होंने बहुत कुछ किया, सुंदर आदर्श हमारे लिए स्थापित करके दिए। उन क्वालिटीज के आधार पर वो जरूर हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए पूजनीय है। दे डिजर्व रिस्पेक्ट, ओके, दे डिजर्व रिस्पेक्ट। जैसे आम जनता के बीच में कोई मंत्री आ जाए, कोई आईएएस ऑफिसर आ जाए, तो हम उसको रिस्पेक्ट देंगे या नहीं देंगे? देंगे ना। लेकिन रिस्पेक्ट देने के लिए हम उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह दे, इज दैट एक्सेप्टेबल? रिस्पेक्ट ही ना दे फिर, प्रेसिडेंट तो है नहीं, ना दो रिस्पेक्ट, वो चलेगा? नहीं, हम रिस्पेक्ट जरूर देंगे, बिकॉज कॉमन जो जनता है उनसे वो बहुत ऊपर है। तो जो भी देवी देवताएं हैं, धर्म स्थापक आत्माएं हैं, जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, हमारे माता पिता को तक को हमने भगवान कह दिया, मानते हैं ना माता पिता के चरणों में स्वर्ग, सो दे डिजर्व रिस्पेक्ट। उन्होंने हमें दिया है कुछ ना कुछ, उन्होंने हमारी लाइफ को सरल किया है, कुछ अच्छी बातें सिखाई है, सो दे उनको सम्मान देना, उनको मानना, इसके लिए कभी ब्रह्मा कुमारीज में मना नहीं किया जाता है। इस बात में आप बहुत क्लियर रहे। हम कभी भी ये नहीं कहते कि आज तक आप जिनको मानते थे उनको मानना छोड़ो, नहीं कहा जाएगा। आप मानिए उनको, बट यथार्थ रीति मानिए। अगर वो मंत्री है तो उसको प्रेसिडेंट ना कहे। सो उनके प्रति जो रिस्पेक्ट हम देते, मान लीजिए श्री राम जी के प्रति, अभी अयोध्या के कारण कितना सभी का वो मन में वो सम्मान, वो प्यार, वो श्रद्धा बढ़ी सबके मन में, है ना? तो क्या सिर्फ अयोध्या जाकर दर्शन करके आ गए, हो गया हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति पूरी हो गई? नहीं। अगर हम रियली में किसी का रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो उनके आदर्शों पर चलना हम सीखें। हम पूजा श्री राम जी की कर रहे हैं, कर्म रावण वाले कर रहे हैं, कौन मानेगा कि राम जी हमारे भगवान हैं? माँ दुर्गा के नवरात्रे आते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, और बेटियों के साथ आज क्या हो रहा है? तो अगर हम इनको मानते हैं तो उनके आदर्शों पर चलने का भी हम लक्ष्य रखें। उनको अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं, आप घर में ही देखिए, आपका बेटा आपके रोज पैर छूता है तो कहेंगे ना कि आपका रिस्पेक्ट करता है, कहेंगे ना? लेकिन पैर छूने के बाद आपकी एक भी नहीं मानता, हा? आप कहेंगे पूरा वर्क जाएगा पश्चिम, आप कहेंगे इस करियर को चूज करो वो दूसरा करेगा, आप कहेंगे ये सब्जी खाओ वो कहेगा दूसरी खा ली, तो क्या कहेंगे? रिस्पेक्ट करता है, करता है रिस्पेक्ट? पैर तो छूता है ना रोज, पैर तो छूता है ना रोज, फिर करता है या नहीं करता रिस्पेक्ट? सोच में पड़ गए सभी, नहीं करता। सिर्फ पैर छूने को रिस्पेक्ट नहीं कहा जाता है। कई लोग कहते ब्रह्मा कुमारीज में आप लोग पूजा आदि क्यों नहीं करते हो? हम कहते कि हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, पैर छूना कोई गलत बात थोड़ी ही है, लेकिन उन्होंने जो सिखाया वो हम कितना करते हैं, और उसके लिए जो पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, आत्मा में जो एम्पावरमेंट चाहिए, आत्मा की जो शक्ति डाउन गई है, पॉजिटिव वैल्यूज इतना आसान नहीं होता नेगेटिव दुनिया में रहकर उसको अडॉप्ट करना, उसके लिए जो शक्ति चाहिए वो तो सोर्स से जुड़े बिना नहीं मिलेगी। तो इसीलिए सोर्स से जुड़ने की बात आती है कि वो भगवान जो इन पांचों कंडीशंस को पूरा करे वो कौन है? तो वो परमात्मा का स्वरूप अब परमात्मा स्वयं आकर हमें बताते हैं। अभी तक जितने सारे हमने भगवान के रूप देखे वो किसने बताए थे? हम आप जैसे खोज करने वाले इंसानों ने, चाहे वो द्वापर युग के ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े संत थे, उन्होंने जो जो ढूंढा भगवान को, जो जो पाया, वो उन्होंने हमारे सामने रखा। लेकिन किसी भी पर्सन के बारे में फुल ऑन डिटेल्स कौन दे सकता है? कोई और पर्सन या वो खुद? वो खुद है ना। तो अभी तक बताया था अदर देन गॉड, जो हम आप जैसे इंसान हैं उन्होंने बताई हुई वो बातें थी। अब एक समय ऐसा आता है जब परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय हमें देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत सुंदर बात आती है, डायरेक्ट भगवान उवाच है, हे अर्जुन, यज्ञ तप दान पुण्य जप तीर्थ आदि के द्वारा तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। आगे क्या आता है, मुझे मेरे द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सो भगवान जब धरती पर आते हैं और स्वयं अपना परिचय देते हैं, वो खुद खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तब हमें उनका एक्यूरेट फॉर्म पता चलता है, तब हमें उनकी एक्चुअल पहचान पता चलती है। तो क्या आप सभी वो पहचान जानना चाहेंगे? आज का दिन नोट कर लेना अपनी डायरी में, ये वो दिन है जब आप भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट होने जा रहे हैं। इट कैन बी योर स्पिरिचुअल बर्थडे। भगवान हमारे पिता की गोदी में हम फिर से उनका बच्चा बनकर आने वाले हैं। सो भगवान का जो रूप है वो यहां दिखाया गया है। भगवान को हम एक दूसरा शब्द देते हैं, परमात्मा, परम प्लस आत्मा, सुप्रीम सोल। आत्मा का फॉर्म कैसा है, कल सीखा था हम सभी ने, निराकार, ज्योति स्वरूप, जस्ट अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। तो परमात्मा कैसा होगा, परमात्मा को भी परम प्लस आत्मा कहा गया, तो वो कैसा होगा, जस्ट लाइक दैट स्टार। जैसे आत्मा है, आत्मा जिसकी संतान है, जरूर परमात्मा भी बिंदु होगा, तो आत्मा भी बिंदु है, लेकिन वो परम है, दैट मीन्स थोड़ा सा बड़ा वाला बिंदु होगा। ऐसे बिंदु की डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, विड्थ, क्या होती है पॉइंट की, जीरो। और जीरो को किसी भी फिगर से मल्टीप्लाई करो, इट कम्स अगेन जीरो। सो आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट विद जीरो डायमेंशंस है, तो परमात्मा बड़ा माना क्या होगा, उसके साइज में फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी उसको परम कहा गया। वो परम इसीलिए कहा गया क्योंकि वो कर्तव्य में बड़ा है, रिश्ते में वो हमारा पिता है, और क्वालिटीज में वो अनंत है, इसलिए उसको परम कहा गया। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, हम कहते हैं तुम तो भाई बड़े आदमी बन गए। तो बड़े आदमी माना, जब मेरे साथ क्लास में पढ़ता था तब 5 फुट का था, अब 8 फुट का हो गया, बड़ा आदमी हो गया, तो हाइट बढ़ गई क्या, उसकी पोजीशन बढ़ा ना उसका समाज में। गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं, तो महात्मा, महान का भी अर्थ बड़ा ही होता है, तो कोई शरीर से बड़े थे क्या, कोई 10-15 फुट थे क्या, नहीं, अपने कर्तव्य से कोई महान कहलाता है, अपने कर्तव्य से कोई दुष्ट या पापात्मा या धर्मात्मा या पुण्यात्मा कहलाती है। और भगवान को हमने कहा परम आत्मा, तो परम आत्मा माना वो कर्तव्यों में, गुणों में, शक्तियों में और रिलेशन में सर्वोच्च है, और सर्वोच्च होने के कारण उसको सुप्रीम या परम कहा गया है। तो रूप क्या हुआ परमात्मा का, निराकार, ज्योति बिंदु। जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, बिकॉज इट्स एनर्जी, एंड एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ऑलवेज इटर्नल। आत्मा एक शक्ति है, एक चेतना है, एंड सिमिलरली परमात्मा भी उसी चैतन्य शक्ति का रूप है। तो निराकार, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, ये परमात्मा का भी रूप है। उनको हमारी तरह कोई शारीरिक आकार नहीं है, वो हमारी तरह किसी जन्म मरण में नहीं आते हैं, और इसीलिए वो सदा उसी स्वरूप में है, इसलिए वो सत्य है। परमात्मा जिनका रूप ज्योति बिंदु है, जैसे हमने पहले देखा कि बहुत सारे अलग अलग रूपों में भगवान को माना गया था, लेकिन अब पता चल रहा है कि एक ज्योति बिंदु स्वरूप है उसका, जिस पर हमें एकाग्र होना भी बड़ा ईजी है। और उनका नाम क्या होगा, नाम भी तो बहुत सारे दिए गए ना भगवान को, जैसे घर में कोई लाडला बच्चा होता है कितने सारे नाम मिलते हैं, तो भगवान भी हम सब उनको भी सभी प्यार करते हैं, तो अपनी भाषा अपनी भावना से उनको बहुत सारे नाम दे दिए। लेकिन भगवान का जो एक स्वकथित नाम है, जो उन्होंने सेल्फ डिक्लेयर्ड जो उनका नाम है, वो है शिव। शिव जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसके तीन अर्थ हैं, शिव अर्थात बिंदी, शिव अर्थात बीज सीड एंड शिव अर्थात जो कल्याणकारी है, जो सर्व का भला करने वाला है। अब देखिए नाम एक ही है लेकिन उसमें क्या क्या आ गया, भगवान का नाम, उसका फॉर्म बिंदी, उसका विजडम वो सीड है, जैसे पेड़ का जो बीज होता है ना उसमें वृक्ष की उत्पत्ति से लेकर हर बात का नॉलेज होता है, तो परमात्मा भी सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज है, सो नॉलेजफुल। यहां विजडम की भी बात आ गई। और नेचर, उनका एक्शन, उनका कर्तव्य क्या है, सर्व मनुष्य आत्माओं का कल्याण करना। तो इस तरह से एक शिव नाम में ही उनके नाम रूप गुण कर्तव्य सब कुछ समाया हुआ है। आप बाकी भी जितने भी नाम परमात्मा के याद आते हैं याद करके देख लीजिए, उस प्रत्येक नाम में परमात्मा का कोई ना कोई कर्तव्य छिपा हुआ हमें मिलेगा, या तो कोई ना कोई क्वालिटी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और उन सभी को अगर हम एसेंस में लाए तो यही आता है कि परमात्मा माना सबका भला करने वाला, सबको सुख देने वाला, सबके दुख हरने वाला, यही आता है ना ध्यान पे। और इसी को मिलाकर एक शब्द कल्याणकारी, और कल्याणकारी अर्थात और शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ परमात्मा का, शिव। शिव अर्थात जो पॉइंट ऑफ लाइट है, जो सृष्टि का बीज रूप है और हम सभी का कल्याणकारी है, एक शब्द में ये सब कुछ वर्णन हो जाता है। तो परमात्मा का रूप हुआ ज्योति बिंदु, बिल्कुल वैसे ही जैसे आत्मा है, और नाम क्या हुआ, शिव। लेकिन बहुत सुप्रीम है ना, तो अपने से बड़े किसी व्यक्ति को हम सीधा नाम से बुलाते हैं क्या, भारतीय भारत की संस्कृति में तो नहीं है, हम विदेश की बात नहीं करेंगे, भारत में तो दो महीने भी कोई बड़ा कजन होगा ना हमें दीदी भैया कहना सिखाते हैं, है ना ऐसा ही। तो परमात्मा तो सर्वोच्च है, सुप्रीम है, क्या सीधा नाम लेंगे उनका, नहीं। तो रिस्पेक्ट से हम कह सकते हैं परमपिता शिव परमात्मा। ऐसे परमात्मा की महिमा तो जितनी की जाए उतनी कम है। कहते सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम और पृथ्वी को दवात बनाओ, पूरे गगन को कागज बनाओ और खुद विद्या की देवी माँ सरस्वती परमात्मा की महिमा लिखने बैठ जाए तो भी कम पड़ेगी। ऐसी अपरंपार महिमा परमात्मा की जिस आधार पर उनको सर्वोच्च सुप्रीम कहा गया। लेकिन फिर भी क्योंकि आज हम उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पूरा भेद पाना है हमें, तभी तो हम उनसे मिल सकेंगे, उनसे जो लेना है वो ले सकेंगे। तो परमात्मा की कुछ मुख्य महिमा जो यहां आपको हम बता रहे हैं, आत्मा की जो 7 क्वालिटीज बताई जाती है, उन 7 क्वालिटीज, कैन एनीवन रिपीट, कोई एक जना बता सकता है 7 क्वालिटीज कल आपको बताए थे, हाँ जी खड़े होकर बताइए प्लीज, वो पीछे बता रहे उनका कुछ रहता है तो आप बताइए जी, पवित्रता, शक्ति, शांति, प्रेम, सुख, ज्ञान, आनंद, एक रह गया, कौन रिपीट, कौन बताएंगे, पावर बोला था शक्ति, हाँ, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। आत्मा के पास भी ये क्वालिटीज है बट हमारी कम ज्यादा होती रहती है। परमात्मा इन सभी क्वालिटीज का सागर है, प्यार का सागर, शांति का सागर, सर्वशक्तिमान है वो, परम पवित्र है, ज्ञान का सागर है, आनंद का प्रदाता है वो। तो ये सारी परमात्मा की महिमा है। 3 लोक कल आपको बताए गए थे, परम धाम जो आत्माओं का घर है, सूक्ष्म लोक जो फरिश्तों की दुनिया है, और ये साकार मनुष्य लोक, इन तीनों लोकों का वो मालिक त्रिलोकी नाथ है, हम सबको पवित्र बनाने वाला है, सर्व सद्गुणों का, पॉजिटिव क्वालिटीज का वो सागर है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का वो बीज रूप है, वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है। वो तीनों कालों को भी जानने वाला है, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को वो बहुत स्पष्ट तरीके से जानता है। जैसे हम आज वर्तमान को जानते हैं, परमात्मा उन तीनों कालों को जानता है। वो सर्वशक्तिमान है, दिव्य बुद्धि के दाता है, आध्यात्मिक ज्ञान वो हमें देते हैं। इस तरह से परमात्मा की बहुत सारी महिमा है। हम सबका भाग्य बनाने वाला, भाग्य विधाता परमात्मा को कहा गया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेवों के वो रचयिता है। ये सारी परमात्मा की महिमा जो किसी भी मनुष्य की नहीं हो सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की महिमा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कल के लेसन और आज के लेसन को कनेक्ट करते हुए ये देखते हैं कि आत्मा और परमात्मा में सिमिलैरिटीज क्या क्या है। जैसे आप खुद भी मंथन कर सकते हैं इस बात के लिए, क्या क्या सिमिलर है। आत्मा का और परमात्मा दोनों ही निराकारी है, दोनों ही पॉइंट ऑफ लाइट है, चेतन शक्ति है, ऊर्जा है, अविनाशी ऊर्जा है, कभी ना खत्म होने वाले, वो अमरनाथ है। तो हम भी उस अमरनाथ की संतान, अमर आत्माएं हैं। क्लियर है ना सभी को। मरता कौन है? शरीर, जब आत्मा उसे छोड़ती है। आत्मा तो अमर है, तो आत्मा भी और परमात्मा भी अमर है और स्वयं प्रकाशित, सेल्फ ल्यूमिनस है। ये सारी हो गई सिमिलैरिटीज। ओके, कुछ डिफरेंसेस भी है या सारा कुछ सेम सेम ही है? नहीं, कुछ डिफरेंसेस भी है। ध्यान रखें, सुप्रीम सोल और सोल शब्द ही अलग है, दैट मीन्स कि जरूर कुछ फर्क होगा। सोल्स आर मेनी, आत्माएं, और आत्माओं में भी कोई पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा है ना, और परमात्मा, गॉड इज वन। हम आत्माएं मां के गर्भ से जन्म लेकर यह शरीर धारण करती है, परमात्मा अवतार लेते हैं, वो अवतरित होते हैं। हम आत्माएं शरीरधारी है, परमात्मा अशरीरी, बॉडीलेस, विदेही है। हम सुख दुख और कई सारे ऐसे जीवन के अनुभव करते हैं जब हम शरीर में होते हैं, जब हम जीवन जीते हैं, और परमात्मा को सर्वोपरि कहा गया, सुख दुख से न्यारे हैं। उनको कभी ऐसे नहीं लगता कि हाँ उसने मुझे ऐसा बोल दिया, बड़ा हर्ट हुआ, उसने बड़ा बड़ा इंसल्ट कर दिया, बड़ा दुख हुआ, ऐसा होगा परमात्मा के लिए? नहीं। हमें तो कई बार गुस्सा भी आता, किसी से नफरत भी हो जाती, कभी हम बहुत खुश हो जाते, कभी बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो इन सब से वो परे हैं। और साथ ही बहुत मुख्य फर्क जो है आत्मा और परमात्मा में, हम सभी आत्माएं जन्म और मरण के चक्र में आती हैं, जबकि परमात्मा इस चक्र से न्यारे हैं। इसीलिए उनको अजन्मा कहा गया है, अयोनिज कहा गया है परमात्मा को। वो आते जरूर है संसार में, लेकिन जैसे कि कहा गया, माता पिता के द्वारा वो जन्म नहीं लेते, लेकिन परकाया प्रवेश करते हैं, अवतरित होते हैं, उनका इनकार्नेशन, भगवान का अवतार गाया जाता है। तो इसीलिए ये सारे फर्क है भगवान और हम आत्माओं में, और हमारा उनके साथ रिश्ता क्या है? क्या है रिश्ता? कल हमारे भाई साहब बहुत अच्छे से पक्का करा रहे थे, क्या लगता है हमारा? वो हमारा परमपिता है। और ये जो भगवान का सारा परिचय हमने आपके सामने रखा, उनका नाम एक बार रिवाइज करते जाए, आपको भी पक्का हो जाएगा। नाम क्या है पूरे रिस्पेक्ट से अगर कहेंगे तो? परमपिता शिव परमात्मा। रूप कैसा है उनका? फॉर्म ऑफ गॉड, निराकार ज्योति बिंदु, जस्ट लाइक सोल है ना, आसमान में जैसे चमकते हुए तारे होते हैं, उन तारों में भी सबसे जो ब्राइटेस्ट स्टार है ना, वो आप सोचो, तारे तो सारे तारे हैं, लेकिन उसमें भी जो सबसे अधिक चमकने वाला सितारा, तो वैसे हम मान सकते हैं भगवान को। क्वालिटीज, क्वालिटीज कल्याणकारी उनका कर्तव्य है ना, क्वालिटीज क्या है? प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, सर्व गुणों के भंडार है, जो आपको पूरी महिमा हमने बताई। तो परमात्मा की वो क्वालिटीज। अब देखिए, किसी के भी बारे में जानने के लिए हमें यही सारी बातें चाहिए होती है ना। उसका नाम क्या है, वो दिखता कैसा है, वो करता क्या है, वो उसका स्वभाव, उसकी नेचर क्या है, सब कुछ जान लिया हमने भगवान के बारे में। और ये कोई नया भगवान इन्वेंट करके ब्रह्मा कुमारीज ने नहीं लाया है। एक्चुअली सभी धर्मों में परमात्मा के इसी स्वरूप को स्वीकार किया गया है, लेकिन क्योंकि छोटा सा बिंदु, जीरो डायमेंशंस वाला, अगर उसकी मुझे पूजा करनी है, उसके मुझे दर्शन करने हैं, उसके प्रति जो भी जिस धर्म की जो रस्म है अकॉर्डिंगली श्रद्धा अर्पित करनी है, तो जीरो डायमेंशन वाले बिंदु को कैसे करेंगे? तो उसको एनलार्ज तो करना पड़ेगा ना, उसका थोड़ा सा बड़ा रूप बनाना पड़ेगा। अब जीरो डायमेंशन वाले का अगर आप एनलार्ज करोगे तो कहीं शेप कुछ बन गया, कहीं कुछ बन गया, बट बेसिक कॉन्सेप्ट इज द सेम। ही इज लाइट एंड ही इज इनकॉर्पोरियल। आप देखेंगे हिंदू धर्म में जो शिवलिंग की पूजा की जाती है, लिंग का मतलब ही होता है चिन्ह, सिंबल, निशानी। तो उस ज्योतिर्लिंग, ज्योति बिंदु शिव परमात्मा का वो सिंबल है, इसलिए उसको शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और ऐसे हर शहर में, हर गांव में, भारत के हर रीजन में हमें शिव के मंदिर मिलेंगे। देवी देवताएं फिर भी रीजनल होंगे। महाराष्ट्र में आप देखेंगे गणेश जी की पूजा होती है, कोलकाता साइड जाओ तो वहां पर माँ दुर्गा की पूजा होती है, उधर साउथ में जाओ तो कार्तिकेय आदि की पूजा होती है ना। तो अलग अलग रीजनल देवताएं मिलेंगे, बट शिव मंदिर आपको हर जगह मिलेंगे। और जितनी भी हम कहानियां सुने ना सनातन धर्म की, उसमें सभी देवताएं फाइनली अल्टीमेटली परमात्मा से ही शक्ति लेते हुए दिखाए हैं। इवन शंकर जी को, श्री राम जी को, श्री कृष्ण जी को भी शिव की पूजा करता हुआ दिखाया गया है। दैट मीन्स कि वो उनसे भी ऊंचे हैं, सर्वोच्च है, भगवान है। जितने भी हमारे मंदिर हैं बने हुए, शिव मंदिर, तो उसमें आप देखेंगे तो उसके लास्ट में जो नाम आता है ना, उसमें नाथ, ईश्वर ऐसा शब्द आएगा, तो वो भी संकेत देता है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि भगवान सर्वोच्च है। नाथ मीन्स क्या हुआ? सबका मालिक है वो, सबसे ऊंच ईश्वर है वो। तो चाहे वो सोमनाथ है, अमरनाथ है, इवन नेपाल में भी जाओ तो पशुपतिनाथ है। और उस एक एक वर्ड का हम, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप अपनी बुद्धि से उस एक एक वर्ड का, एक एक नाम का मीनिंग निकाल सकते हैं कि अमरनाथ क्यों कहा, सोमनाथ क्यों कहा, ज्ञान का सोमरस पिलाते हैं, पशुपतिनाथ हम सभी को पाशों से, बंधनों से, दुखदायी जो भी सारे बंधन है उनसे छुड़ाते हैं। तो परमात्मा के हर नाम में आपको उनका वो कर्तव्य या क्वालिटीज दिखाई देंगे। ये तो हो गई हमारे सनातन धर्म की बात, लेकिन बाकी धर्मों में भी आप देखेंगे। वैसे तो मुसलमान लोग इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती, लेकिन उनका जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है मक्का, हज के लिए जहां वो जाते हैं, वहां भी वो संगेश्वर या काबा का पत्थर जिसे बोलते हैं, वो भी निराकार स्वरूप को दर्शाता है। इट सिंबलाइजेस द इनकॉर्पोरियल फॉर्म ऑफ गॉड। उसको कोई साकार देहधारी नहीं दिखाया गया है, और वो उसके प्रति जाकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इसी तरह से गौतम बुद्ध है या जैन धर्म है, उसमें भी परमात्मा को कभी साकार रूप में नहीं कहा गया है, प्रकाश का ही स्वरूप माना गया है भगवान को। ऐसे ही जीसस क्राइस्ट ने तो बहुत क्लियर कह दिया, गॉड इज लाइट, है ना। और गुरु नानक देव जी ने तो इतनी सुंदर, इतनी एक्यूरेट महिमा की परमात्मा की, एक ओंकार, निराकार, सतनाम, तो उन्होंने भी परमात्मा को निराकार कहा। उन्हें उसी ज्योति बिंदु परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था, जिसकी महिमा बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई। तो इस तरह से परमात्मा के निराकार होने को और उसके प्रकाश स्वरूप होने को संसार के हर धर्म में स्वीकार किया गया है। बेसिक मान्यता ही वही है, जस्ट एनलार्ज करने में कहीं कहीं वो काबा का पत्थर बन गया, कहीं चिंकौनसे की बन गया, कहीं शिवलिंग बन गया। और इसी आधार पर धर्म के जो सिंबल्स है, कहीं ज्वाला का रूप उन्होंने माना, कहीं स्टार माना, लेकिन बेसिक सच्चाई हमारे सामने ही आ रही है कि उस ज्वाला में, उस लाइट में भी एक्यूरेट फॉर्म क्या है, जो कभी चेंज नहीं होता, जो कांस्टेंट है, पॉइंट ऑफ लाइट, जो परमात्मा का एक्यूरेट रूप है। और वही फिर ब्रह्मा कुमारीज में आपको बताया जा रहा है, जो एक्यूरेट फॉर्म है, जो सेल्फ डिक्लेयर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड है, वो हम आपको दे रहे हैं। और अकॉर्डिंगली जब हम जुड़ते जाएंगे परमात्मा से, मैं आत्मा उस परमपिता परमात्मा की संतान, तो अकॉर्डिंगली उतना वो एक गहरा कनेक्शन भगवान के साथ हमारा जुड़ता जाएगा। और जहां कनेक्शन होगा वहां प्राप्ति ना हो, ये हो नहीं सकता, होगी जरूर। और ये अपना अपना अनुभव हमें बताता जाएगा। आज लाखों ऐसी आत्माएं हैं, ऐसे लोग हैं, अलग अलग धर्म, जाति, अलग अलग देश के, जो परमात्मा के सही स्वरूप को समझकर, उस पिता के साथ जुड़कर अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए सफल हुए हैं। नहीं तो अभी तक जस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, पता चल रहा था कि ये गलत है मेरी लाइफ में, लेकिन उसको बदल नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अंदर से आत्मा खाली हो गई थी, कमजोर हो गई थी। अब उस सर्वशक्तिमान से संबंध जोड़कर आत्मा में शक्ति आती है, और तब हम अपने संस्कारों को, जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी हमारी कमजोरियां हैं, उसको हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो नया भगवान नहीं दे रहे हम कोई, ये वही है जिनको सभी ने एक्सेप्ट किया हुआ है। भगवान की कंडीशंस में था ना सर्वधर्म मान्य, तो ये यहां पर प्रूव होता है कि परमात्मा के इस रूप को संसार के हर धर्म में स्वीकार किया गया है। और अब हम उसको और एक्यूरेटली, और अच्छे से समझकर उसके साथ संबंध जोड़ने जा रहे हैं। वो निराकार है, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, ना उसके कोई माता पिता बड़े हैं, ना वो खुद ज्ञान का सागर है, तो किसी से उसको शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, किसी के चरणों में झुकने की उसको आवश्यकता नहीं है, वो सर्वोच्च है। शरीर होता है तो गर्मी, सर्दी और बाकी चीजों का प्रभाव पड़ता है, शरीर से न्यारा है वो, इसलिए सर्वोपरि है, इसलिए वो सत्य है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा जिसका पूरा परिचय हमें मिला, लेकिन एक बात अभी भी रह रही है कि अगर मुझे उनसे मिलना है तो मैं कहां मिलूंगी। एड्रेस भी तो पता होना चाहिए ना, या नहीं बस जान लिया उतना काफी है, अब तुम अपनी जगह रहो हम अपनी जगह, एड्रेस पता होना चाहिए ना, तो कहां रहते हैं परमात्मा। कल वैसे थोड़ा सा आपको बताया गया था, एक छोटा सा लॉजिक देकर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कई लोग परमात्मा को सर्वव्यापी मानते हैं, कण कण में व्यापक मानते हैं, या कहते हैं कि हमारे दिल में बैठा है। तो छोटा सा लॉजिक है, इसके लिए हम 25-30 आपको तर्क दे सकते हैं, बट समय कम है। आप हमारी लिटरेचर डिपार्टमेंट में जाकर परमात्मा कहाँ है वाली किताब ले सकते हैं, उसमें वो सारे तर्क आपको मिल जाएंगे। बट यहां मैं एक छोटा सा तर्क ये देना चाहूंगी, जो सारी परमात्मा की महिमा हमने सुनी उसमें एक भी बुराई थी नहीं, तो परमात्मा की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जो सबसे अच्छा है और जो सदा अच्छा है, उसको हमने भगवान कहा है। ठीक है, जो सबसे अच्छा है और कभी कभी नहीं, जो सदा अच्छा है, वो भगवान है। और वो अच्छे से अच्छा भगवान अगर हम सबके अंदर है तो हम सभी कैसे होने चाहिए, बताइए कैसे होने चाहिए, कितने अच्छे होने चाहिए, कितने अच्छे होने चाहिए, जस्ट लाइक फादर है ना। और दुनिया कितनी अच्छी होनी चाहिए सोचिए, अगर वो प्यार का सागर, शांति का सागर, वो दया का सागर, वो करुणा क्षमा का सागर, वो अगर हमारे अंदर मौजूद है तो हम सभी और हमारी ये दुनिया कैसी होनी चाहिए। सोचिए समझ रहे हैं सभी? अब थोड़ा सा आंखें खोलकर आज की दुनिया के बारे में बताएं, है ऐसी दुनिया आज? नहीं है ना, इतने क्राइम्स है, इतना चरित्र का पतन हो चुका है, इतनी हिंसा हो रही है, इतनी हेरा फेरी घोटाले हो रहे हैं, तो ये सारा क्या भगवान कर रहा है क्या? नहीं, ये हम सभी आत्माओं के अपने अपने डिसीजंस है, अपने कर्म और अकॉर्डिंगली अपने फल। कर्म सिद्धांत के भी बहुत गहरे ज्ञान को भगवान ने हमारे सामने स्पष्ट किया है। तो वो हरेक का इंडिविजुअल अपना अपना रोल, अपना अपना पार्ट है। भगवान अगर सब में होता तो दुनिया का रूप ही कुछ और होता। तो भगवान एक्चुअली सब में व्यापक नहीं है। ही इज ओमनीसाइंट, ही इज ओमनी पोटेंट, बट नॉट ओमनी प्रेजेंट। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में व्यापक नहीं है। और ही कण कण में या हर व्यक्ति में आज वाइसेस, अलग अलग निगेटिव टेंडेंसीज, जो विकार है, वो व्यापक है। और उनसे हमें मुक्त कराने के लिए भगवान ने वचन दिया है कि जब जब धर्म की हानि होगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। भगवान ने अपने आने का टाइम तक दे दिया है हमें, तो कण कण में कैसे व्यापक हो सकता है? आने का टाइम कौन दे सकता है? जो यहां उपस्थित नहीं है, जो यहां ही रहता है, वो नहीं कहेगा कि मैं इतने बजे आता हूं या इस दिन आता हूं। वचन दिया गया कि जब जब धर्म की हानि होगी, सृष्टि पर पाप दुख बढ़ेगा, तब मैं आऊंगा। तो उस समय, जो कि आज वो समय वर्तमान में चल रहा है, चहू और जो हम देख रहे हैं धर्म ग्लानि के चिन्ह, वो संकेत, वो निशानियां जो शास्त्रों में बताई गई थी, साफ दिख रही है। और यही समय होता है जब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं। और अवतरित होकर फिर हमें पहले तो अपना परिचय देते हैं। हम तो खुद को भी भूल के बैठे हुए थे। हम कौन है? कौन है हम? आत्मा। और क्या समझ बैठे थे? शरीर, हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और न जाने कितने सारे भेद। उन्होंने हमें पहले तो अपना परिचय दिया कि तुम शरीर नहीं, एक अविनाशी शक्ति आत्मा हो। फिर खुद का भी दिया परिचय, जो आज हमने पाया कि अनेकों रूपों में, अनेकों कण कण में मैं बटा हुआ नहीं हूं, मैं एक हूं और तुम्हारे जैसा ही हूं, सिर्फ गुणों में, शक्तियों में तुमसे उच्च हूं। इसलिए उसको कहा गया, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम। तो इस दुनिया में अगर वो आता है तो कहां से आता होगा? वो एड्रेस परमात्मा का, कल हमने तीन लोक देखे थे, तो परमात्मा का जो एड्रेस है वो है परम धाम। निराकारी दुनिया, जो हम सभी आत्माओं का भी घर है, वही परमपिता परमात्मा का भी वही घर है। वैसे भी देखो, बाप और बच्चों का घर तो एक ही होता है ना। बच्चे कारोबार के कारण कहीं और सेटल हो भी जाते हैं तो भी क्या कहते हैं, कहां से बिलोंग करते पूछा जाता है, तो अपने माता पिता वाला ही गांव, वही शहर बताएंगे ना। चाहे आप सालों से रह रहे हो दूसरे शहर, दूसरे देश में, लेकिन कहने में क्या आएगा, हम मूल वहां के हैं, हम इंडियन ओरिजिन के हैं, हम साउथ के हैं, हम वहां के हैं, कहेंगे ना। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा, अर्थात आत्माओं का और परमपिता परमात्मा का घर एक ही है, परम धाम। और इसीलिए परमात्मा की जब महिमा करते हैं तो उसके लिए कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, उस ब्रह्म लोक का वो रहने वाला है। मुसलमान लोग उसको सातवें आसमान का जादूगर कहते हैं। पांच तत्वों की ये साकारी दुनिया, छठा सूक्ष्म लोक और सातवां हमारा परम धाम, जिसे शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम कई नामों से बुलाया गया। क्रिश्चियन लोग उसको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, आसमान के भी ऊपर रहने वाला, है ना। इसी तरह से अगर हम किसी धर्म की भी अगर बात नहीं ले, जब भी हम भगवान की बात करेंगे, ईश्वर की बात करेंगे, तो हमारी नजरें कहां जाती है? बिल्कुल आम भाषा में उसको क्या बोलते, ऊपर वाला। उंगली से कहाँ इशारा करते, ये तो नहीं कहते तेरे मेरे अंदर वाला सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ जानता है, जो तेरे अंदर मेरे अंदर बैठा है वो न्याय करेगा। क्या शब्द आता है हमेशा? ऊपर वाला। प्रार्थना करेंगे हमेशा नजरें ऊपर जाएंगी, तो ऊपर कहाँ? सूरज चांद तारों से भी पार, वो सुनहरे लाल प्रकाश वाली दुनिया जो हम सभी आत्माओं का और परमपिता परमात्मा का घर है। उस घर से हम इस कर्म क्षेत्र पर आते हैं पार्ट प्ले करने के लिए। उस नाटक की स्टोरी भी आपको पता चलेगी, नेक्स्ट डे का आपका लेसन है मेडिटेशन के बाद का, कि इस नाटक में हम कैसे पार्ट प्ले करते हैं। लेकिन आज का जो लेसन है, क्लियर हुआ सभी को? परमपिता परमात्मा का कंप्लीट परिचय, जिसके लिए आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा नेति नेति, हम नहीं जान पाए कि वो कौन है, कैसा है, ईश्वर का अंत नहीं पाया जा सकता। और आज एक स्थान पर बैठे हुए, कोई जंगल में नहीं बैठे हैं हम, लेकिन एक स्थान पर बैठे हुए कितना अच्छे से हमें भगवान का पूरा भेद पता चल गया। और इस भेद के बाद एक जरूरी बात जो रह जाती है, जो रिश्ते की हमने बात कही थी, प्राप्ति करने के लिए सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता है, उसके साथ वो संबंध अनुभव करना भी जरूरी है। वैसे तो हम हमेशा जब भी प्रार्थना करते, अरदास या आरती करते हैं, तो हम बोलते आए भगवान को, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अब समय है इन सभी रिश्तों को, इन सभी संबंधों को उसके साथ अनुभव करने का, ठीक है? तो चलिए मेडिटेशन की छोटी सी एक हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपको दोबारा से समय पर वापस आना है उस सत्यम शिवम सुंदरम का परम सुंदर परम तेजस्वी स्वरूप सामने देखें। मन ही मन अपने संपूर्ण विचारों को एकाग्र करते हुए मस्तक के बीच आत्मा का चमकता हुआ सितारा महसूस करें। इस शरीर से अलग मैं एक चैतन्य सत्ता, अजर अमर अविनाशी आत्मा, सफेद प्रकाश का अति सूक्ष्म बिंदु, एक नन्हा सा सितारा, जिस पिता परमात्मा को हम सदियों से ढूंढते रहे, उसके पल भर दीदार के लिए न जाने कितने कष्ट उठाए, आज वो मेरे सामने है, अनुभव करे स्वयं परमपिता परमात्मा मुझे आत्मा के सच्चे पिता, जिनके साथ मेरा अनादि अविनाशी संबंध है, वो स्वयं मेरे सामने उनके दिव्य प्रकाश की किरणें सीधा मेरे मस्तक पर, भ्रुकुटी के बीच बैठी आत्मा पर, उनकी सुप्रीम पॉजिटिव एनर्जी उनका निस्वार्थ प्यार अपने पिता के गोदी में होने का एक बेहद का सुकून, लगातार परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पर, अंतर मन की गहराई तक समाते जाए। एक डीप कनेक्शन महसूस करे भगवान से, वो ऊंचे ते ऊंची हस्ती, मुझ आत्मा का पिता, मेरे मीठे शिव बाबा, दिल का कनेक्शन, एक रूहानी संबंध अनुभव करे। आज सारा दिन बार बार आत्मा को अपने पिता की गोदी में होने का एहसास कराए। मैं उनकी लाडली संतान, शिव बाबा की अति प्यारी, अति लाडली संतान, ओम।